सोचिए, कोई एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाएं, वहां एक बहुत ही सुरीला, दिल को छू लेने वाला प्रेम गीत गाया जा रहा हो। गीत एक खूबसूरत अंगूर के बाग के बारे में है जिसे किसी ने बहुत प्यार से सींचा है। माहौल एकदम मतलब बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन अचानक बीच गाने में ही गायक दरवाजे बंद कर देता है, सीधे दर्शकों की तरफ उंगली उठाता है और वो प्रेम गीत अचानक से एक खौफनाक मौत के फरमान में बदल जाता है।
बाप रे, ये तो एकदम शॉक देने वाला मोमेंट हो गया।
बिल्कुल, सुनने वालों के तो रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे ना। और आज हम जिस विषय की इस विस्तृत अध्ययन में गहराई में उतरने वाले हैं, उसमें बिल्कुल यही होता है। आज हम डॉक्टर जॉन ओसवर्ल्ड द्वारा यशाया यानी आइजाया के अध्याय 4 और 5 पर की गई टिप्पणियों को खंगालेंगे। और देखिए, इस चर्चा का उद्देश्य केवल किसी प्राचीन किताब के पन्ने पलटना नहीं है।
सही बात है, ये सिर्फ इतिहास नहीं है।
हाँ, मेरा मतलब है कि प्राचीन इसराइल का उत्थान, उनका पतन और उनके भविष्य की उम्मीद, ये सब मिलकर आज के मानव स्वभाव की एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जो हमें हमारे ही बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं कि कैसे ये स्रोत सामग्री न्याय, उम्मीद और एक खौफनाक प्रेम गीत के बीच झूलती है।
और ये शुरुआत ही इस पूरे पाठ की सबसे बड़ी खासियत है। मतलब अगर हम यशाया के लिखने की इस अजीब और चौंकाने वाली शैली को देखें ना, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे साहित्यिक भाषा में इंटरचेंज कहा जाता है।
इंटरचेंज मतलब अदला बदली।
हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर कोई ऐसी कहानी पढ़े जहाँ घटनाएं एक सीधी रेखा में नहीं चल रही हैं, बल्कि लेखक लगातार दो अलग अलग वास्तविकताओं के बीच छलांग लगा रहा है, तो वो है इंटरचेंज। एक तरफ एकदम सकारात्मक उम्मीद है, एक ऐसा आदर्श भविष्य जहाँ सब कुछ शानदार है, और ठीक उसी के समानांतर एक नकारात्मक न्याय है, वो कड़वी और भयानक सच्चाई जो वर्तमान में घट रही है। यशाया इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ ये दिखाने के लिए करते हैं कि बिना वर्तमान की इस कड़वी सच्चाई और पीड़ा का सामना किए वो आदर्श भविष्य कभी नहीं आ सकता।
अरे वाह, ये तो किसी ऐसी फिल्म की तरह हो गया जहां निर्देशक जानबूझकर दृश्यों को बारी बारी से काटता है। मतलब एक फ्रेम में एक डरावना बर्बाद हो चुका वर्तमान दिखता है जहां चारों तरफ सिर्फ राख और धुआं है, और ठीक अगले ही पल कट्टू अगला फ्रेम एक बेहद खूबसूरत आदर्श भविष्य दिखाता है जहाँ हरियाली और शांति है।
बिल्कुल सटीक उपमा दी है आपने। ये विरोधाभास उस तबाही के प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है।
हाँ, और अध्याय 4 की शुरुआत में ना, आयत 2 से 6 के बीच यही देखने को मिलता है। एक गहरी तबाही के तुरंत बाद कहानी अचानक उम्मीद की ओर मुड़ती है। डॉक्टर ओसवाल्ड के नोट्स में एक खास शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, द ब्रांच या शाखा। ऐसा लगता है कि इस एक शब्द को लेकर विद्वानों में काफी बहस है।
हाँ, इस शब्द ने सदियों से विद्वानों को सोचने पर मजबूर किया है। अगर हम पुराने नियम के अन्य हिस्सों को देखें ना, जैसे यिर्मयाह या जकरिया की किताबें, तो वहां इस शाखा का स्पष्ट अर्थ मसीहा से है, यानी आने वाले एक महान राजा या उद्धारकर्ता से।
इसीलिए कुछ अंग्रेजी अनुवादों में, जैसे कि NIV में, इसे कैपिटल B के साथ ब्रांच लिखा गया है।
एकदम सही। उनका मानना है कि यह सीधे तौर पर मसीहा की ओर इशारा कर रहा है।
लेकिन अगर हम हिब्रू भाषा के लिखने के तरीके को देखें तो क्या इसका कुछ और मतलब भी निकल सकता है? क्योंकि डॉक्टर ओसवाल्ड ने हिब्रू कविता की एक खास तकनीक का भी जिक्र किया है यहाँ पर।
हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। हिब्रू कविता की सबसे बड़ी ताकत हमारी तरह राइमिंग या तुकबंदी नहीं है, बल्कि पैरेललिज्म या समानांतरता है। इसका मतलब है कि एक वाक्य का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के अर्थ को ही एक अलग रूप में दोहराता है।
अच्छा,
तो यशाया के उस वाक्य पर गौर करें, ईश्वर की शाखा सुंदर होगी और भूमि का फल इज़राइल के बचे हुए लोगों के लिए गर्व होगा। अब यहाँ समानांतरता के नियम के अनुसार शाखा का सीधा जुड़ाव भूमि का फल से है।
ओह, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में कोई आध्यात्मिक मसीहा है या ये सिर्फ भूमि की भौतिक उर्वरता की बात कर रहा है जहाँ तबाही के बाद बंजर जमीन फिर से हरी भरी होने वाली है।
बिल्कुल, और डॉक्टर ओसवाल्ट यहाँ दोनों ही संभावनाओं को खुला रखते हैं। उनका कहना है कि शायद ये दोनों ही बातें एक साथ सच है।
समानांतरता को अगर हम आज की आम भाषा में समझें तो ये कुछ ऐसा कहने जैसा है कि मेरा बटुआ खाली है और मेरे बैंक खाते में सन्नाटा है।
हाँ, एकदम सही।
मतलब दोनों का अर्थ एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। तो यहाँ शाखा और भूमि का फल एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है।
क्या?
अगर जमीन बदल रही है, उपजाऊ हो रही है, तो उन लोगों का क्या होगा जो उस जमीन पर रहते हैं? मतलब अगर एक भ्रष्ट समाज को एक सुंदर उपजाऊ जमीन दे दी जाए तो वे तो उसे भी बर्बाद कर देंगे ना।
यही तो सबसे बड़ा पेच है।
यहाँ बताया गया है कि जो लोग इस तबाही से बचेंगे वे पवित्र कहलाएंगे। लेकिन क्या इंसान बिना किसी कठोर न्याय या भयंकर तबाही के नहीं सुधर सकता? आखिर ईश्वर एक बटन दबाकर सबको सिर्फ माफ क्यों नहीं कर देता? ये पूरी प्रक्रिया इतनी हिंसक और कठोर क्यों होनी चाहिए?
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और उसका जवाब उस समय की दुनिया के नजरिए में छिपा है। डॉक्टर ओसवाल्ट बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि यशाया के लिए पवित्र होने का असल अर्थ क्या था। प्राचीन बुद्धपरस्त संस्कृतियों में देवताओं और इंसानों के बीच की पवित्रता का मतलब सिर्फ अलग होना था। उनके देवता चाहे क्रूर हों, स्वार्थी हों या हिंसक हों, वे बस इंसानों से अलग थे और इसलिए उन्हें पवित्र मान लिया जाता था।
अच्छा, मतलब सिर्फ एक दूरी थी।
हाँ, लेकिन यशाया यहाँ एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी बात कह रहे हैं। पवित्र होने का मतलब केवल अलग थलग होना या कोई अनुष्ठान पूरा करना नहीं है। इसका मतलब है ईश्वर के शुद्ध चरित्र को अपनाना, जैसे कि नए नियम में इफिशियों में निर्दोष होने की बात कही गई है ना। ये कोई बाहरी लेबल नहीं है, ये इंसान के भीतर का पूर्ण बदलाव है।
इसका मतलब है कि बीमारी इतनी गहरी थी कि सिर्फ एक बैंडेड लगाने से या चलो माफ किया कहने से काम नहीं चलने वाला था। उसे जड़ से काटने के लिए एक बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत थी।
और वो सर्जरी एक बहुत ही भयंकर रूप में आती है। यशाया यहाँ एक हिब्रू शब्द इस्तेमाल करते हैं, रुआह। इस शब्द के कई आयाम हैं, जैसे हवा, सांस या आत्मा। लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ट चेतावनी देते हैं कि इसे कोई उह ठंडी और सुखद हवा का झोंका समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।
तो फिर ये रुआ असल में है क्या?
यशाया कहते हैं कि ईश्वर न्याय और आग के रुहा से अशुद्धियों को धोएगा। ये कोई उह गुलाब की पंखुड़ियों से छिड़का गया पवित्र जल नहीं है। ये एक ऐसा भयंकर फायर स्टॉर्म या तूफान है जो रास्ते में आने वाली हर गंदगी को जलाकर खाक कर देता है।
बाप रे।
लेकिन ध्यान दें, ये आग नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि सोने को भट्टी में तपाकर शुद्ध करने के लिए है। इसलिए लोगों के लिए उम्मीद इस बात में नहीं है कि वो किसी तरह इस न्याय से बच निकलेंगे। उनकी असली उम्मीद इस बात में है कि वो इस भयंकर न्याय की आग के माध्यम से गुजर कर शुद्ध हो जाएंगे।
ये नजरिया तो मतलब पूरी कहानी को ही पलट देता है। उम्मीद न्याय से भागने में नहीं बल्कि न्याय के पार जाने में है। लेकिन जब वे इस आग से गुजर के शुद्ध हो जाते हैं तो क्या होता है?
डॉक्टर ओसवाल्ट बताते हैं कि इस शुद्धिकरण के बाद एक सुरक्षा का वादा आता है। उन्होंने यहाँ एक शब्द शेकिनाह का उपयोग किया है।
शेकिनाह? पर जितना मुझे याद है ये शब्द तो पुरानी इमेजरी जैसे बादल और आग के स्तंभ से जुड़ा है ना?
हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। शेकिना शब्द असल में मूल हिब्रू बाइबल में कहीं मिलता ही नहीं है। ये बाद के अरामी पैराफ्रेज से आता है।
अच्छा, तो बाद के विद्वानों को ये नया शब्द गढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि जब लोग निर्वासन में थे, अपना सब कुछ खो चुके थे, तब उन्हें ये बताने के लिए एक शब्द चाहिए था कि ईश्वर सिर्फ आसमान में बैठकर उन्हें दूर से देख नहीं रहा है। शेकिना का मतलब है ईश्वर की उपस्थिति का तंबू तानना।
ओह, मतलब ईश्वर खुद उनके साथ उस पीड़ा और तबाही के बीच अपना तंबू गाड़ कर रह रहा है।
बिल्कुल, शुद्धिकरण के बाद ईश्वर अपने लोगों के ऊपर सुरक्षा का वो अदृश्य तंबू तानता है। लेकिन ये शुद्धिकरण बार बार क्यों जरूरी है? इसे समझने के लिए डॉक्टर ओसवाल्ट इसराइल के इतिहास को एक जजेस साइकिल के रूप में विश्लेषित करते हैं।
वो साइकिल जो असल में एक हेलिक्स है।
एकदम सही। ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर इतिहास को एक गोल चक्र की तरह देखते हैं जो उसी जगह वापस आ जाता है। पहले लोगों को आशीर्वाद मिलता है, फिर वे ईश्वर को भूल जाते हैं, फिर उन पर अत्याचार होता है, वे रोते हैं, एक उद्धारकर्ता आता है और वे फिर से ईश्वर को भूल जाते हैं।
हाँ, ये तो एक लूप हो गया।
लेकिन डॉक्टर ऑज़वाल्ड कहते हैं कि ये एक गोल चक्कर नहीं है, ये एक हेलिक्स है, एक ऐसा स्प्रिंग जो लगातार नीचे की ओर जा रहा है। हर बार जब वे गिरते हैं तो वे पहले से भी गहरे गर्त में गिरते हैं, उनका नैतिक पतन लगातार गहरा होता जाता है।
लेकिन रुकिए, अगर वे इस हेलिक्स में लगातार नीचे की ओर ही गिर रहे हैं तो डॉक्टर ऑज़वाल्ड इसे नई शुरुआत की किताब क्यों कहते हैं? क्या ये केवल अंत को टालना नहीं है?
ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि वे अपनी पिछली गलतियों के परिणामों से पूरी तरह बच जाते हैं, बल्कि ये है कि हर बार गिरने के बावजूद ईश्वर उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करता। वो अदृश्य सुरक्षा हमेशा काम कर रही होती है।
हाँ, और अब इसी अदृश्य सुरक्षा को समझाने के लिए डॉक्टर ऑज़वाल्ड ने दो बहुत ही रोचक संस्मरण साझा किए हैं जो मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा।
हाँ बिल्कुल, वो किस्से बहुत दिलचस्प है।
पहला किस्सा उनकी किशोरावस्था का है। वे अपने दोस्तों के साथ कार में थे और जोश में आकर उन्होंने कार की रफ्तार बहुत तेज कर दी। अचानक कार एक पहाड़ी की चोटी से हवा में उछल गई।
हे भगवान।
हाँ, मतलब वो एक ऐसा पल था जहाँ किसी भी क्षण कार पलट सकती थी और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन चमत्कारिक रूप से कार सीधी जमीन पर आई और वे सब सुरक्षित बच गए।
ये तो सचमुच दिल दहला देने वाला अनुभव रहा होगा।
बिल्कुल, और दूसरा किस्सा तो इससे भी गहरा अर्थ रखता है। एक बार वे कैलिफोर्निया के रेगिस्तान वाले एक हाईवे पर अपनी नई कार से जा रहे थे। सामने चल रहे एक ट्रक के आगे अचानक कोई जानवर आ गया। ट्रक चालक ने उसे बचाने के लिए ट्रक मोड़ा और इससे बचने के चक्कर में डॉक्टर ऑज़वाल्ड की कार सड़क से उतरकर कई बार पलट गई। कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उन्हें और उनके साथी को खरोच तक नहीं आई।
ये किसी चमत्कार से कम नहीं है।
हाँ, और जब स्टेट पेट्रोलमैन मतलब पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और उसने कार की हालत देखी तो डॉक्टर ऑज़वाल्ड ने कहा, ये ईश्वर की कृपा थी, उसने हमें बचा लिया। इस पर उस पुलिस वाले ने एक ऐसा जवाब दिया जो बहुत ही मजाकिया था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी थी। उसने कहा, ईश्वर की कृपा तो थी, लेकिन वो पक्का आपकी पिछली सीट पर नहीं बैठा था।
ये बहुत ही सटीक बात है। उस पुलिस वाले ने एक झटके में एक बहुत बड़ी दार्शनिक सच्चाई कह दी,
है ना? मतलब अगर ईश्वर पिछली सीट पर बैठा होता तो शायद दुर्घटना होती ही नहीं।
बिल्कुल, सुरक्षा तूफानों से पूरी तरह बचने में नहीं है, बल्कि तूफानों के बीच से गुजरकर जिंदा बाहर आने में है। यही शकीना है। ईश्वर तबाही को रोकता नहीं है, बल्कि उस तबाही के बीच मौजूद रहता है।
तो उनके पास ये अदृश्य सुरक्षा है, वे आग से गुजरकर आ चुके हैं, लेकिन क्या वे सच में बदलते हैं? क्योंकि जब हम अध्याय 5 की शुरुआत देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका जवाब एक बहुत ही डरावना नहीं है।
हाँ, ये एकदम अचानक बदलाव है।
अभी तक सब कुछ उम्मीद और सुरक्षा के बारे में था, लेकिन अचानक पूरी कहानी एक बहुत ही दुखद यथार्थ में बदल जाती है। एक प्रेम गीत जो असल में एक धोखा निकलता है।
अध्याय 5 की शुरुआत प्राचीन दुनिया के साहित्य में एक बहुत ही दुर्लभ क्षण है। यहाँ पैगंबर यशाया केवल ईश्वर के क्रोध का संदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे ईश्वर के गहरे दुख को, एक टूटे हुए दिल की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। वे एक ऐसे किसान की कहानी सुनाते हैं जो एक बंजर जमीन पर अंगूर का बाग लगाता है। डॉक्टर ऑज़वाल्ड इस मेहनत को समझाने के लिए यहूदा की भौगोलिक स्थिति का जिक्र करते हैं। वे अपने 82 वर्षीय पिता की एक बात बताते हैं, और जो खुद एक किसान थे, जब उनके पिता ने बस की खिड़की से इसराइल की उस पथरीली जमीन को देखा ना, तो उन्होंने हैरान होकर कहा था, कोई इस पत्थरों के ढेर के लिए क्यों लड़ेगा?
क्योंकि खेती के नजरिए से वो जमीन एक भयानक सपना थी।
बिल्कुल, ये जमीन केवल और केवल अंगूर उगाने के ही लायक थी, और वो भी अत्यधिक खून पसीना बहाने के बाद। जब यशाया ये कहानी सुना रहे थे तो वहां मौजूद हर किसान समझ रहा था कि बाग लगाने का मतलब क्या है। 3 साल की कमर तोड़ देने वाली मेहनत।
बाप रे, 3 साल?
हाँ, पहले साल सिर्फ जमीन से भारी पत्थर हटाना और उन पत्थरों को जमा करके एक दीवार बनाना। दूसरे साल सबसे अच्छी नस्ल के अंगूर की बेले लगाना, जंगली जानवरों से बाग को बचाने के लिए एक निगरानी मीनार बनाना और एक विशाल चट्टान को काटकर वाइन प्रेस खोदना।
कोई भी यही सोचेगा कि इतने प्यार, इंतजार और मेहनत के बाद तीसरे साल की फसल तो एकदम शानदार होगी।
लेकिन तीसरे साल जब वो किसान फसल काटने जाता है तो उसे क्या मिलता है? उसे मिलते हैं सिर्फ जंगली, छोटे और कड़वे अंगूर। ये मौसम की कोई खराबी नहीं थी, ये एक ऐसा गहरा धोखा था जिसने किसान की पूरी मेहनत का मजाक उड़ा दिया था। और यहाँ यशाया एक बहुत ही चतुर दार्शनिक मोड़ लेते हैं।
हाँ, मैंने पढ़ा है बाग का मालिक यानी ईश्वर उन किसानों से ही पूछता है कि अब मुझे इस बाग के साथ क्या करना चाहिए, और वे लोग बिना सोचे समझे कहते हैं कि इसकी दीवारें गिरा दो, इसे जंगली जानवरों को रौंदने दो। मतलब वे खुद अपने ही हाथों से अपना फैसला सुना देते हैं।
और ठीक उसी पल जाल बिछ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजा डेविड और पैगंबर नाथन की कहानी में हुआ था।
हाँ, जब डेविड ने एक अमीर आदमी के जुल्म की कहानी सुनकर गुस्से में कहा था कि उस आदमी को मर जाना चाहिए,
और तब नाथन ने उंगली उठाकर कहा था वो आदमी तुम हो। यशाया भी यहाँ अचानक कहानी का रुख मोड़ते हैं और कहते हैं वो अंगूर का बाग तुम ही हो, ये तुम्हारे ही समाज की कहानी है।
ये सुनकर तो मतलब किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। और जो बात इस धोखे को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है वो है हिब्रू भाषा का वो शानदार शब्द खेल। ये ऐसा है जैसे कोई आपको एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाए लेकिन उसके मायने जहर से भरे हों।
हिब्रू भाषा में यशाया जो कहते हैं वो सच में दिल चीर देने वाला है। ईश्वर कहता है कि उसने मिशपत यानी न्याय की उम्मीद की थी, लेकिन उसे मिला मिशपक यानी रक्तपात।
मिशपत और मिशपक, क्या बात है।
हाँ, और उसने चाहा सिदाका यानी धार्मिकता, पर उसे मिली जाका यानी पीड़ितों की चीख। जरा सोचिए, मिशपत और मिशपक, सिदाका और जाका, ये शब्द सुनने में कितने समान लगते हैं।
एकदम एक जैसे लगते हैं।
बाहर से देखने पर इसराइल का समाज बिल्कुल सही, धार्मिक और न्यायपूर्ण लग रहा था। उनके अनुष्ठान सही थे और उनका रूप रंग सही था, लेकिन अंदर ही अंदर वो समाज पीड़ितों के खून और आंसुओं से सना हुआ था।
ये सच में झकझोड़ देने वाला है। वे सोच रहे थे कि वे एक आदर्श समाज बना रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह सड़ चुका था। तो वे कड़वे अंगूर असल में थे क्या? ये मिशपक और जाका किस रूप में दिखाई दे रहे थे? यहाँ इशाया समाज के उन पापों की बात करते हैं जिन्हें शौक या अंग्रेजी में वोज कहा गया है।
हाँ, इन कड़वे अंगूरों को समझने के लिए हमें इन पांच शोक को देखना होगा। डॉक्टर ओसवाल्ड स्पष्ट करते हैं कि यहाँ वो का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर कह रहा है अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, मजा आएगा।
नहीं।
अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? यह शोक एक गहरी पीड़ा और अफसोस को दर्शाता है। यह एक पिता के आंसू है जो अपने बच्चों को खुद अपनी बर्बादी की ओर जाते हुए देख रहा है। इन पांचों का एक खौफनाक क्रम है। सबसे पहले आता है लालच, जो असल में मूर्ति पूजा का ही एक रूप है, जमीन और संपत्तियों को हड़पने की अंधी दौड़।
और जब लालच बढ़ता है तो
दूसरा चरण आता है आत्मभोग। लोग सुबह से रात तक केवल शराब पीने और अपने सुख विलासिता में डूब जाते हैं।
और जब इंसान पूरी तरह से अपने सुख में अंधा हो जाता है तब वो तीसरे चरण में पहुंचता है, जानबूझकर पाप करना और ईश्वर का मजाक उड़ाना। डॉक्टर एसॉल्ट ने इस घमंड को समझाने के लिए रॉबर्ट इंग्रेसोल की एक बहुत ही दुखद कहानी साझा की है।
हाँ, वो नास्तिक वक्ता की कहानी।
बिल्कुल, रॉबर्ट इंग्रेसोल 19वीं सदी के एक बहुत प्रसिद्ध वक्ता थे। वे अक्सर खुले मंच से ईश्वर को चुनौती देते थे। वे अपनी जेब से घड़ी निकालते और कहते, अगर तुम सच में हो तो मैं तुम्हें मुझे मारने के लिए एक मिनट का समय देता हूँ।
बाप रे, कितना घमंड था।
हाँ, और जब एक मिनट बीत जाता और कुछ नहीं होता तो वे मुस्कुराते हुए कहते, देखा, कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर ने उन पर कोई बिजली नहीं गिराई। डॉक्टर रोसवाल्ड बताते हैं कि जब इंगरसोल की प्यारी बहन की मौत हुई ना तो उनका सारा घमंड टूट गया। वे अपनी बहन के ताबूत पर गिरे और फूट फूट कर रोते हुए बस एक ही बात चिल्ला रहे थे, ओ कितना घना अंधकार है, अंधकार।
ये वाक्य रूह कंपा देने वाला है। ईश्वर ने उन्हें किसी हथियार से नहीं मारा, ओह, बल्कि बस उन्हें उसी अंधकार में छोड़ दिया जिसे उन्होंने खुद चुना था।
बिल्कुल।
और जब समाज इस स्तर तक पहुंच जाता है ना, तो चौथा शोक प्रकट होता है, नैतिक व्यवस्था का पूरी तरह उलट जाना। लोग बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई कहने लगते हैं, वे अंधेरे को रोशनी और रोशनी को अंधेरा बताते हैं।
मतलब सब कुछ अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिया जाता है।
हाँ, और अंत में पांचवा शोक आता है, भ्रष्ट नेतृत्व। ऐसे नेता जो शराब पीने में तो महारत ही हैं, ओहो, लेकिन न्याय की कुर्सी पर बैठकर रिश्वत लेते हैं और निर्दोषों के हकों को कुचल देते हैं।
और जब पूरा समाज इस तरह से सड़ चुका हो, जब हर तरफ सिर्फ मिसफक यानी रक्तपात ही हो, तब कारण और प्रभाव का नियम सामने आता है। एक शब्द है जो यशाया बार बार इस्तेमाल करते हैं, देयरफोर या इसलिए। इन सब पापों का अंतिम परिणाम ये हुआ कि ये ज्ञानहीन समाज निर्वासन की ओर बढ़ा।
यही वो बिंदु है जहां तबाही का वो रुख, वो आग का तूफान जमीन पर उतरता है। ईश्वर जो पूरे इतिहास का स्वामी है, वो अपनी चाल चलता है। यशाया बहुत ही भयानक शब्दों में वर्णन करते हैं कि ईश्वर एक सीटी बजाकर असीरियन सम्राट और उसकी खूंखार सेना को बुलाता है।
एक सीटी बजाकर?
हाँ, डॉक्टर ऑसवर्ल्ड सेना की तुलना एक दानव मशीन से करते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता। उनके बाण नुकीले हैं, धनुष खींचे हुए हैं, उनके घोड़ों के खुर चकमक पत्थर की तरह हैं और उनके रथ के पहिए बवंडर की तरह हैं। वे एक भूखे शेर की तरह दहाड़ते हुए आ रहे हैं और कोई भी इसराइल को उनके जबड़ों से नहीं बचा सकता।
ये पूरी तस्वीर ही किसी भी इंसान को दहला देने के लिए काफी है। इस पूरे अध्ययन को अगर हम एक जगह समेटे ना, तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ये पूरी प्रक्रिया, वो भयंकर आग, वो तपाही और उसके बाद का बदलाव, ये सब केवल इसलिए नहीं था कि लोग अपनी सजा भुगते हैं और बाद में अच्छा महसूस करें। इसका एक बहुत बड़ा मिशन था। ये शुद्धिकरण इसलिए था ताकि वो बचा हुआ शुद्ध हुआ समाज पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सके और दुनिया उनके माध्यम से ईश्वर को जान सके।
यही यशाया का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को विराम दें, मैं अध्याय 5 के अंत में छिपे एक बहुत ही उत्तेजक विचार को सामने रखना चाहूंगी।
हाँ, बिल्कुल बताइए।
यशाया स्पष्ट करते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि उन्हें किसी ईश्वरीय रोशनी की जरूरत नहीं है और जो इस जिद पर अड़े रहते हैं कि वे खुद अपनी रोशनी का स्रोत बनेंगे और अपने नियम खुद तय करेंगे, उनका अंत क्या होता है? यशाया कहते हैं कि ऐसे लोग अंततः घोर अंधकार और संकट में ही घिर जाते हैं। आप खुद अपनी रोशनी पैदा नहीं कर सकते। जब आप प्रकाश के मूल स्रोत से कट जाते हैं, तो आपके पास केवल और केवल अंधकार ही बचता है।
क्या बात है, खुद अपनी रोशनी बनने की जिद। ये विचार हमें सिर्फ प्राचीन इसराइल के बारे में नहीं, बल्कि सीधे हमारे आज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम सोचें कि क्या आज की हमारी ये आधुनिक दुनिया, जो इतनी उन्नत और आज़ाद होने का दावा करती है, जो हर पुरानी मान्यता को ठुकरा कर खुद अपनी रोशनी बनने की जिद में है, क्या वो भी अनजाने में उसी घोर अंधेरे और संकट की ओर तो नहीं बढ़ रही है? क्या हमारे समाज की हरियाली के पीछे भी कहीं कड़वे अंगूरी तो नहीं पनप रहे हैं?
ये तो सच में सोचने वाली बात है,
है ना? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें किसी प्राचीन किताब में नहीं, बल्कि अपने भीतर और अपने आसपास के समाज में झांककर खोजने होंगे। खैर, आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार कुछ और ऐसे ही अनसुलझे और गहरे विचारों के साथ।